अध्याय संख्या 6 और श्लोक संख्या 35 यही है जी आज, am I right? मुझे यही बताया गया। मेरे पीछे दोहराएं आज सब लोग। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनः दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहति। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहते। श्री भगवान उवाच असंशयं महाबाहु मनो दुर्निग्रहं चलं अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृहते। इसका अनुवाद दोहराइएगा मेरे बाद। अनुवाद दिया है श्री प्रभुपाद ने, श्री प्रभुपाद की। मेरे पीछे बोलिएगा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे मां बाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तात्पर्य पढ़ता हूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है अपने माइंड में रखिए। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा ये संभव है। ये अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य को भगवान की नवदा भक्ति प्राप्त हो सकती है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर, जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमतापूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कठिनतर है अपेक्षा इसके कि कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाया जाए। यह व्यवहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य सा परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परिशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है, भूख लगने पर जितना अधिक मनुष्य खाता जाता है उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार और सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल प्रचार है, और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना योगी के लिए उपयुक्त पथ है। ये उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। प्रकरण चल रहा है ध्यान योग का, छठा अध्याय जो है ध्यान योग कहलाता है। मैंने पिछली बार भी चर्चा किया था कि भगवान के साथ जो संबंध है उसका ज्ञान हमको मिलता है पहले 6 अध्यायों में भगवद गीता के 1 से लेकर 6 तक। तो छठा अध्याय जो है भगवान के साथ संबंध का आखिरी अध्याय है। अभी चर्चा चल रही है, भगवान बोल रहे हैं, भगवान भगवद गीता के अंदर जब भी बोले हैं उन्होंने अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। प्रश्न किया गया, जो प्रश्न का उत्तर आया है वहां शब्द इस्तेमाल हुआ है श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं असंख्ययम महाबाहु मनो दुर्नी ग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौनताय वैराग्येन च गृहते। 4 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है असंख्ययम महाबाहु। अर्जुन को महाबाहु कह के भगवान ने पुकारा, अर्जुन नहीं कहा यहां, कौनते भी नहीं कहा। पहली लाइन के अंदर महाबाहु कहा है और दूसरी लाइन में कौनते कहा। कि पहली लाइन में भी तो कौनते कह सकते थे, शब्दों के आरंभ में अर्जुन ने किसे पुकार सकते थे, परंतु यहां कहा महाबाहु। यह श्लोक कहा जा रहा है तो इस श्लोक को कहने का बैकग्राउंड क्या है। भगवान ने स्वीकार किया, क्या स्वीकार किया, जो अर्जुन कह रहा है। अर्जुन ने क्या कहा और क्यों कहा। पहली बात कि अर्जुन ने क्या कहा, और दूसरी बात यह है कि अर्जुन ने क्यों कहा। अर्जुन जो है 33वें श्लोक में कहता है हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक एवं असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। ध्यान योग का पूरा प्रकरण मन को वश में करने का फॉर्मूला बताया जा रहा है कि आपका मन वश में कैसे होगा। नंबर 1, नंबर 2 ये बात बताई जा रही है कि मन को वश में करने का लाभ क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज, क्यों मन को वश में किया जाए, किस लिए किया जाए, क्या आवश्यकता है, व्हाट इज द नीड। अब अर्जुन कह रहा है कि हे मधुसूदन, मधु क्या होता है, मधु किस लिए शब्द इस्तेमाल होता, मधु और सूदन 2 शब्द हैं, ये दोनों को मिलकर बना है मधुसूदन। तो मधुसूदन जो है यहां पर अर्जुन ने शब्द इस्तेमाल किया है तो किस लिए किया है। हर शब्द का भगवत गीता के अंदर, चाहे भगवान को किसी नाम से पुकारा गया है उस श्लोक के अंदर, या अर्जुन को किसी नाम से पुकारा गया, डिफरेंट नेम से पुकारा गया है, वो कोई ना कोई बात सिग्निफाई करता है, उसका कोई ना कोई एडवांटेज है, कोई ना कोई उसका रोल है। तो यहां जो है भगवान के लिए अर्जुन प्रयुक्त करता है शब्द मधुसूदन। मधुसूदन का अर्थ क्या है, यहां पर भगवान को मधुसूदन क्यों कहा जाता है। कौन था जी मधु राक्षस जिसका वध किया था, कौन से अवतार में किया था? कृष्ण कथा पढ़ते हैं, कृष्णा बुक में तो कहीं मधु राक्षस का उल्लेख है नहीं, है क्या? कृष्णा बुक कितनों ने पढ़ी है कहीं मधु राक्षस का उल्लेख? बड़े बड़े राक्षसों का उल्लेख है, व्योमासुर, बलम्बासुर, अघासुर, बकासुर है, पर कहीं मधु राक्षस का वध मधुसुर है कहीं पे? मधु नामक दैत्य जो है सारे वेदों को, उपनिषदों को, पुराणों को चुराकर समुद्र में ले गया था, और मत्स्य अवतार में भगवान ने उस मधु नामक राक्षस का वध करके सारे के सारे शास्त्रों को, सारे के सारे वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को वहां से वापस लेके आया। परंतु यहां पर इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है मधु, मधु मतलब शहद। हे भगवान, आप तो मधु की भांति मीठे हैं, मधु की भांति स्वीट हैं, स्वीटनेस को पोजेस करते हैं, और मुझसे कितना कड़वा काम करने को कह रहे हैं। इस कड़वा काम को आप समाप्त करिए, इस कड़वे काम को भी मीठा बनाइए, अर्थात इस कड़वे काम का भी नाश करिए। सूदन का अर्थ होता है नाश करने वाला। मन को वश में करना आसान काम है क्या? मीठा है कि कड़वा है? बहुत कठिन है। तो यहां जो है अर्जुन कह रहा है, मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, संक्षेप में, डिटेल्स नहीं बताए, डिटेल्स पढ़ने होंगे आपको जो है पतंजलि का योग शास्त्र पढ़ना पड़ेगा, तो सारे डिटेल्स दिए हुए, आपने तो शॉर्ट में बताया, परंतु इस शॉर्ट वाला भी फॉलो करना मेरे लिए अव्यवहारिक, प्रैक्टिकल नहीं है, डिफिकल्ट, असहनीय है, इनटॉलरेबल। जो भक्त भगवान के अंग संग रहता है उसके लिए इस योग पद्धति को फॉलो करना मुश्किल है, तो हम लोगों का क्या हाल होगा? हाउ कैन वी फॉलो इट? क्या हमारे लिए पॉसिबल है? जब अर्जुन जैसा भक्त जो है नहीं कर सका, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे? यहां अर्जुन ने प्रश्न किया है, मैं कहता क्यों नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। चंचल का अर्थ क्या होता है? पल क्षण भर के अंदर आप यहां बैठे हैं, मन आपका अमेरिका घूम रहा है, अमेरिका से निकल के इंग्लैंड चला गया, इंग्लैंड से निकल के बंबई आ गया, बंबई से निकल के फिल्म स्टार पे चला गया, ना टीवी में आ गया, सीरियल में आ गया, घर में आ गया, सब्जी में आ गया, दाल में आ गया, पराठे में आ गया, मतलब एक एक क्षण में आपका जो है मन पलटता जा रहा है, इतना चंचल है, अस्थिर है, कहीं टिकता नहीं। कोशिश करते हैं टिकाने की, परंतु टिकता नहीं, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। पर अर्जुन ने ये बात किस उपलक्ष्य में कही, किस लिए? भगवान मन को वश में करने का तरीका बता रहे हैं, और मन को वश में करने का जो उन्होंने फाइनल प्रकरण बताया, हमने पिछली बार चर्चा करी थी 28वें श्लोक के अंदर, इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगे रहकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है, और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। ये भगवान ने बताया फल है मन को वश में करने का, ये भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति, डिवोशनल सर्विस विद लव, ट्रांसेंडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव, उसमें उसको जो है परम सुख की प्राप्ति होती है, एंजॉयज हैप्पीनेस। परंतु कहते हैं कि इसका जो रिजल्ट है, जब आप जो है निरंतर योगाभ्यास के अंदर भौतिक कलमश से मुक्त हो जाओगे, तो उसके बाद वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको और मुझ में समस्त जीवों को देखता है, संदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता। स्वरूप सिद्ध का मतलब है जिसने अपने आप को पहचान लिया है कि वो दास है और मैं स्वामी हूं, जीवेरे स्वरूप कृष्णेर नित्य दास, उसने एक्सेप्ट कर लिया है, उसने इस बात को समझ लिया है कि वो दास है और मैं उसका स्वामी हूं। अब वो ध्यान योगी जो है इसका अनुभव करता है, इसको अब एक्सपीरियंस करता है कि दास का कर्तव्य क्या है, स्वामी का ड्यूटी क्या है। तो यहां भगवान क्या कहते हैं, जब वो मन को वश में कर लेता है, योग में परफेक्शन ले लेता है, तब मुझको समस्त जीवों में देखता। कैसे देखता, कैसे देखता, आओ। ब्रह्मा जी ने बछड़े और गोप बालक चुराए, भगवान ने अपने आप को रिप्लेस कर दिया, सारे बछड़े और गोप बालक बन गए। बिल्कुल हर चीज परफेक्ट है, डंडी भी है हाथ में, बांसुरी भी है, तुरई भी है, तो सब कुछ जो है बिल्कुल एज इट इज बन गए। तो गांव वाले उनके माता पिता जब भी देखते थे तो सब गोप बालकों में उनको अल्टीमेटली एक स्टेज आई कि कृष्ण दिखाई देने शुरू हो गए। यस, दे कैन सी, हर एक चीज में भगवान दिखाई दे रहे हैं। हमको भी देखना है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में भगवान परमात्मा रूप में स्थित हैं, तो हमें ये एक्सेप्ट करना है, उनको देखना है, हमें उन्हें आदर देना है, उन्हें नमस्कार करना है, उन्हें प्रणाम करना है, उन्हें मान सम्मान देना है। इसलिए हम जो है सामने वाले को प्रभु के नाम से पुकारते हैं और स्त्री को माता के नाम से पुकारते हैं, बिकॉज वी एक्सेप्ट कि भगवान उनके हृदय में विराजमान हैं। हम हर प्राणी के अंदर भगवान को देखते हैं, ये तभी आता है लेवल जब आप भक्ति के प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ते हो। और मुझ में समस्त जीवों को देखता है, भगवान कह रहे हैं कि मेरे, जब वो मेरे को देखता है तो ये एक्सेप्ट करता है कि सारे जीव जो है मेरे ही अंश हैं, मैं वंश है जीव लोक है जीव भूते सनातनी, ये सारे जो है मेरे को ही सर्वत्र हर जगह हर कण में हर जगह पे मुझे विराजमान देखता है कि भगवान सब जगह पे है। ये तभी पॉसिबल हो जाता है जब उसका मन वश में होता, बिना मन को वश में किए एक्सेप्टेंस नहीं आती। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता, क्योंकि वो हर जगह मुझे देख रहा। भगवान चौथे अध्याय में जाके आपको बता रहे हैं कि ये यथा मां प्रबोधन थे, जैसा जिस भाव मेरे प्रति रखता है, जिस भाव से मेरी शरण में आता है, जिस भाव से मेरी सेवा करता है, मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूं, मैं भी उसको वैसा ही भाव निभाता हूं। जब वो हर जगह मेरे को देख रहा है तो मैं उसको हर जगह दिखाई देता हूं, कभी भी उसे अदृश्य नहीं होता। आई एम नेवर इनविजिबल फॉर हिम, आई एम ऑलवेज विजिबल। और चूंकि वो मेरे को लगातार देख रहा है हर प्राणी के अंदर हर वस्तु के अंदर, इसलिए मेरे लिए भी वो अदृश्य नहीं है, मैं हमेशा उसको देखता रहता हूं। एक तदाति प्रति घनाति, एक प्रेम का संबंध बन जाता है जीव का मेरे प्रति और मेरा जीव के प्रति। ये एडवांटेज है मन को वश में करने की। जब मन वश में हो जाएगा तब ये स्थिति आ जाती है, तब ये पोजिशन आ जाती है। हम कहते हैं जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में सदैव स्थित रहता है। क्योंकि तो ध्यान योग के अंदर आप हृदय में जो परमात्मा बैठे हुए हैं, जो भगवान का नारायण स्वरूप है, चतुर्भुज रूप है, उसके ऊपर ध्यान लगा रहे, तो अगर आप जो है उसकी भक्ति पूर्वक सेवा करते रहोगे और मेरे को अर्थात कृष्ण को भगवान रथ के ऊपर किस रूप में विराजमान है, द्विभुज दो भुजाधारी, कौन सा स्वरूप है, श्याम सुंदर भगवान वहां पर जो है कृष्ण स्वरूप में विराजमान है। कहते हैं जो मेरा कृष्ण स्वरूप है वो और जो हृदय में परमात्मा स्वरूप है वो, दोनों में कोई भेद नहीं है। जो दोनों को एक ही मानता है, अन्न मानता है और फिर परमात्मा की भक्ति पूर्वक सेवा करता है, वो मुझ में हमेशा स्थित रहता है। इज ऑलवेज विद मी, नेवर अवे। अब जब ये सारी बातें आ रही हैं कि भगवान को सब जगह देखना, भगवान पे ध्यान लगाना, तो अर्जुन घबरा गया, कैसा कैसे होगा, क्योंकि उसको पता है कि जो बुद्धि है, जो डिस्क्रिमिनेटरी पावर है, जो तत्व का विरूपण करती है, क्या सत्य है क्या असत्य है, क्या करनी है क्या करनी है, क्या क्या मेरे लिए जो है कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, वो बुद्धि के अंदर जो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है मन के वश में आके फेल हो जाती है। तो बुद्धि भटक जाती है। कैसे भटकती है, जिस प्रकार प्रचंड वायु नाव को नदी के अंदर बहाकर दूर ले जाती है, उसी तरह मन जिस विचरणशील इंद्रिय के ऊपर लगा होता है वो इंद्रिय बुद्धि को हर लेती है। दूसरे अध्याय का 67वां श्लोक, बुद्धि फेल हो गई है क्योंकि मन ने उस पर कब्जा कर लिया है। टेक्निकली क्या है, विषय, इंद्रिया, मन, बुद्धि और अहंकार और फिर आत्मा। परंतु यहां क्या आता है कि इंद्रियां बलवान हैं और वेगवती हैं। यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसवं मन। कि इंद्रियां बलवान हैं, वेगवती हैं, इतनी बलवान हैं कि उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं जो उनको वश में करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। इवन ही फेल्स, वो भी जो है इंद्रियों को वश में नहीं कर पाता। जब वो स्थिति है तो आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जो बुद्धि है वो फेल हो जाएगी। तो अर्जुन कह रहा है कि बुद्धि फेल हो जाएगी, मैं आपको सब जगह देखूंगा कैसे, हाउ विल आई सी, बुद्धि तो काम नहीं कर रही क्योंकि मन की इंद्रियों ने उसे हर लिया। देन अब ये प्रश्न आता है जब अर्जुन कहता है कि मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय है, इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मन जो है सारे कबाड़े की जड़ है। अब अर्जुन ने प्रश्न किया, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथी बलवदे दृढ़म तस्या अहम निग्रह मन्य वायो एव सुदुष्करम। बहुत कठिन है, कितना कठिन है, इतना कि आंधी को वश में करना। मन चंचल, मन प्रमाथी, प्रमाथी शब्द किस लिए इस्तेमाल, यत्ता ही अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्यता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसव। प्रमाथी, प्रमाथी शब्द वहां भी इस्तेमाल हुआ, प्रमाथी यहां भी इस्तेमाल हो रहा। प्रमथ हाथी ने सारे गांव के अंदर फसल दौन डाली और दो चार लोगों को मार दिया। प्रमथ का मतलब क्या है, पागल। हाथी जो है प्रमथ हो गया है, अर्थात हाथी पागल हो गया है। मतलब आपका मन जो है चंचल है, उच्छृंखल है, हटीला है, अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना उतना ही कठिन लग रहा है जितना वायु को वश में करना। अब अर्जुन ने भगवान के आगे अपनी समस्या रख दी, आपने तो मुझे गाइड कर दिया, आपने मुझे सारा कुछ सिखा दिया, थ्योरम सारी बता दी, तो मुझसे उसका एग्जाम्पल ही सेट नहीं हो रहा, मैं फेल हूं क्योंकि मन ने बुद्धि पे कब्जा कर लिया। अब प्रश्न यह है कि मन पे किसने कब्जा किया, मन किस पे लगा है, विचरणशील इंद्रिय पे। इसका मतलब है मन को फेल करने वाली है इंद्रिय, और इंद्रिय किस पे लगी है, इंद्रिय किस पे लगी है, विषय वस्तु पे। तो बुद्धि को अल्टीमेटली फेल किसने किया, विषय वस्तु। यही भगवान बता रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगतेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध अभिजायते क्रोधात भवति सम्मोहा समोहा स्मृति विरोहा स्मृति प्रशांत बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात पनश्यति। बुद्धि अस्थिर क्यों होती है, बुद्धि में डिस्क्रिमिनेटरी पावर जो है लूज क्यों हो जाती है, समाप्त क्यों हो जाती है। जब इंद्र विषयों का चिंतन होता है तो मनुष्य की उसमें आसक्ति हो जाती है। तो बिगिनिंग कहां से हुई, इंद्र विषय, कामना डिजायर मन के थ्रू प्रकट हुई है। पर डिजायर कब हुई है, डिजायर का ओरिजिन कहां से हुआ, कहां से पैदा हुई डिजायर, आईफोन लेना है, एप्पल का बढ़िया मॉडल आईफोन चाहिए, मैंने तो सुना नहीं था आज तक, ना देखा है, ना सुना है ना देखा है, जब सुन लिया हाँ हाँ आईफोन आया बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है आईफोन, वेरी नाइस फोन है, बहुत लेटेस्ट है। अब प्रभु जी ने मुझे दिखा दिया, देखो जी आईफोन होता है, और दो चार क्वालिटी, दो चार गुडनेस बता दी इसकी, तो मेरा मन उसमें आसक्त हो गया। आसक्ति कब हुई, जब मेरी इंद्रियों का विषय वस्तु से संसर्ग हुआ, जब तक मुझे आईफोन के बारे में नहीं मालूम था मेरी आसक्ति नहीं, आई डिडंट नो, वो पता ही नहीं था मेरे को उसके बाद, नॉलेज नहीं थी मुझे। जैसे ही मेरी इंद्रियों का स्पर्श, मेरी इंद्रियों का टच, मेरी इंद्रियों का कॉन्टेक्ट जो है वो उस आईफोन के साथ हुआ, तो मेरे मन के अंदर उसे प्राप्त करने की लालसा जागृत हो गई। यस आई शुड हैव इट, मेरे को भी ये लेना चाहिए। तो ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों का चिंतन करने से। अब आसक्ति हुई है, आसक्ति से कामना हुई, डिजायर हो गई, यस आई शुड हैव इट। और डिजायर होने के बाद जब डिजायर फुलफिल नहीं होती है तो क्रोध होता है, जब डिजायर फुलफिल होती है तो एक वाइफ के लिए भी आ जाए, दो हो जाए ना, एक बेटे के लिए भी आ जाए, तीन हो जाए ना, एक मैं अपने बॉस को गिफ्ट करना चाहता हूं, चार हो जाए ना, यू डिजायर बढ़ती जाती है बिकॉज इट इज फुलफिल्ड नाउ। जैसी डिजायर फुलफिल होगी तो आपके पास जो है उसकी लोभ प्रकट होता जाएगा। जब क्रोध होता है तो आदमी आवेश में आ जाता है, उसे समझ में नहीं आता किन शब्दों को प्रयोग कर रहा है, उसे समझ में नहीं आता मैं किस प्रति शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे इनके प्रति कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, उसे ये समझ में नहीं आता कि मुझे इनको मारना पीटना चाहिए था कि नहीं मारना पीटना चाहिए था। मीन्स ही लूज़ेस हिज सेंसेस, कंप्लीट ब्लैक आउट हो जाता है, मोर इल्यूजन। उसके बाद स्मरण शक्ति का विभ्रम, फॉरगेट्स मेरे सामने कौन है। एक बार उसने जो है जो करना था आवेश के अंदर आके कर दिया, बाद में चाहे रिपेंट करे, बाद में उसको पश्चाताप हो, बाद में प्रायश्चित करे, सॉरी फील करे, ये करे वो करे, बट वंस ही इज कमिटेड है प्लांटर, उसे छुप नहीं सकता। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो गई तो बुद्धि नष्ट हो गई। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक किसे कहते हैं, विवेक, विवेक है, समझिएगा एक सिंपल बात, बुद्धि एक इंस्ट्रूमेंट है, एक यंत्र है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कहेंगे हाँ मेरे को ज्ञान मिल रहा है, इंटेलिजेंस, आई एम वेरी इंटेलिजेंट सो आई कैन लर्न द थिंग्स। अगर बुद्धि नहीं है तो आपको ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और ये बुद्धि ही आपको ज्ञान का इस्तेमाल करने का यंत्र है। बुद्धि ही आपको जो है ज्ञान जो आपने प्राप्त किया है उसको इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, आपने पहाड़े पढ़ लिए, टेबल्स आ गए, गिनती आ गई, मल्टीप्लिकेशन आ गया, डिवीजन आ गया, सब काम सीख लिए बेसिकली। बच्चे से बोला बेटा जरा बाहर जाना बाजार के अंदर से डेढ़ दर्जन संतरे ले आना जाके। तो वहां गया दुकानदार के पास, पूछा बोले क्या रेट है, बोला 15 रुपये दर्जन है। अब उसे जो है डेढ़ दर्जन कीमत निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए या पेपर पेन चाहिए, वो पहाड़े सब फेल हो गए। मीन्स बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए भी आपको जो है जो ज्ञान प्राप्त किया है उसको यूज करना है तो बुद्धि चाहिए आपको, यू नीड इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंस में एक्चुअल इंटेलिजेंस क्या है, व्हाट इज फिक्स्ड इंटेलिजेंस, कि आप विचलित नहीं होते, आप अविचलित रहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या ठीक है क्या गलत है, इस सब का आपको पूरा ज्ञान रहता है। सत्य में असत्य में भेद कर पाते हैं, इसको बोलते हैं विवेक। इसका दूसरा नाम है डिस्क्रिमिनेटरी पावर, आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेद कर पाना कि मुझे क्या करना चाहिए था क्या नहीं करना चाहिए था। अब अर्जुन जानता है कि बुद्धि तो नष्ट हो जाएगी, मन विचलनशील इंद्रिय पर लग गया है, वो बुद्धि को हर लेगी, विषयों का चिंतन हो रहा है बुद्धि को हर लेगी, तो मन बेचारा तो बुद्धि के नीचे आना चाहिए, मन बुद्धि के ऊपर हावी हो गया, क्योंकि मन जो है उस इंद्रिय के ऊपर फंसा है। तो कंट्रोल कौन कर रहा है इस वक्त बुद्धि को, कंट्रोल कौन कर रहा, मन कर रहा। शादी में गए भाई, बुद्धि कह रही है कि हम तो कृष्णा कॉन्शियस हैं, हमें यहाँ पे कुछ खाना पीना नहीं है, बिकॉज यहाँ प्याज लहसुन वगैरह बहुत सारी चीजें डली होंगी, हमें कुछ प्रयोग नहीं करना है। मन ललचा गया, बड़ा स्वाद आया, कितना बढ़िया आइटम है, तो नहीं इस्कॉन डिवोटी तो नहीं है आसपास, नहीं है तो चुपके से गप कर लिए। किसने भटकाया, विषय वस्तु ने, किसको भटकाया, इंद्रियों को, इंद्रियों से मन को। आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फेल हो। भूल गए। इस पॉइंट को कंसीडर करते हुए अर्जुन ने कहा कि मन बड़ा उच्छृंखल है, हटीला है, बलवान है परंतु चंचल। इस मन को वश में करना उतना ही कठिन है जितना कि आंधी को वश में करना। अब भगवान उसे कहते हैं, हे महाबाहु कुंती पुत्र असंशयम महाबाहु। भगवान ने पहला ही शब्द इस्तेमाल किया असंशयम, भी जो तू बात कहता है मैं मानता हूं, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, तेरी बात गलत नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है। पर फिर अर्जुन को उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, तेरी भुजाएं महान हैं। कैसे महान है? कि तूने तो शिवजी को भी जीत लिया था, इन्होंने तुझे पशुपतास्त्र दिया तेरे से हारने के बाद, तूने उनको भी जीत लिया था, तूने चित्ररथ को जीता है, तूने बड़े बड़े युद्ध लिए हैं, तेरे पास गांधीव जैसा धनुष है, तेरी बाजुएं महान है, नंबर एक। दूसरा शब्द, दूसरा अर्थ क्या है महाबाहु का, हम साधारण भाषा में प्रयोग करते हैं, ये मेरे दो भाई मेरी दो बाजुएं हैं, कहते हैं नहीं कहते, ये मेरी भुजाएं हैं, ये मेरी बाहें हैं, तेरे पास तो एक से एक बढ़ के योद्धा तेरे साइड में खड़ा है, वो सब तेरी भुजाएं हैं, कितने महान योद्धा तेरी तरफ हैं, और फिर तू कह रहा है मन वश में नहीं होता। फिर तू कह रहा है कि मन वश में नहीं होता, और फिर शब्द इस्तेमाल किया कौंतेय, कि कुंती जिसने जीवन के अंदर इतने कष्ट सहे, इतनी तकलीफें सही, फिर भी मन को विचलित नहीं होने दिया, तो उसका पुत्र। तो दोनों शब्द जो इस्तेमाल किए हैं दोनों का बड़ा ही स्पेशल मीनिंग है। एक के अंदर कहा कि तुम महाबाहु तुम्हारी भुजाएं महान हैं, तुम्हारे साथी जो तुम्हारा संग साथ दे रहे हैं वो सब तुम्हारी भुजाओं के रूप में तुम्हारे साथ उपलब्ध हैं, और नंबर दो बोला कौंतेय यहां पर कि कुंती महारानी जिसने इतनी परिस्थितियां टेढ़ी होने के बाद भी अपना कभी विचलित नहीं हुई, धैर्य नहीं खोया, तो उसके पुत्र हो और कह रहे हो जी मुझसे मन कंट्रोल नहीं होता, ऐसी बात है। व्हाई? फिर भगवान कहते हैं निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। भगवान एक्सेप्ट करते हैं कि यस, इस चंचल मन को वश में करना बहुत कठिन है, परंतु उपयुक्त अभ्यास तथा विरक्ति के द्वारा ऐसा संभव है। तो अभ्यास क्या है और विरक्ति क्या है, व्हाट इज वैराग्य एंड व्हाट इज अभ्यास, अभ्यास क्या करना, व्हाट इज प्रैक्टिस। सिंपल सा एग्जांपल है, जिस दिन हम पहले दिन जो है कार के अंदर बैठते हैं तो हमारा पूर्ण ध्यान जो है स्टीयरिंग पे होता है, ब्रेक पे होता है, एक्सीलेटर पे होता है और क्लच पे होता है। अभी क्लच दबाना है, ऑटोमेटिकली नहीं दबता, अभी मुझे ब्रेक लगानी है, अभी मुझे सीधा करना है स्टीयरिंग को, पूरा ध्यान हमारा उसके ऊपर होता है। पर जैसे जैसे हम गाड़ी चलाते जाते हैं क्लच ऑटोमेटिकली दबता चला जाता है, ब्रेक ऑटोमेटिकली लगती चली जाती है, बातें भी करते रहते हैं और स्टीयरिंग भी कंट्रोल होता रहता है। दिस इज प्रैक्टिस, इसलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, कि हमें अभ्यास करेंगे, अभ्यास मींस हमें मन को वश में कैसे करना है इसका अभ्यास करना। अब मन को वश में करने के लिए कोई ऐसी वस्तु इस्तेमाल नहीं करनी है, कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो मन को अवश करे, मतलब मन को वश से हटा दे, मन को भटका दे। दे आर डूस, दे आर डोंट्स। मन को वश में करने के तरीके क्या हैं? क्या करेंगे आप? वैराग्य की जब हम बात करते हैं, वैराग्य के भी दो पार्ट हैं। एक पार्ट मन को वश में करने की हेल्प करता है, दूसरा पार्ट भी मन को वश में करने की हेल्प करता है, अभ्यास है वो, दोनों में प्रैक्टिस है। डूज मतलब मुझे ये करना है, ये मेरी प्रेस्क्रिप्शन है। डोंट्स मीन्स ये मुझे नहीं करना है, ये मेरी प्रोहिबिशन है, परहेज है, ये नहीं करना। तो करना क्या है? मुझे अपने मन को वश में करने के लिए क्या अभ्यास करना है? व्हाट डू आई डू? तो उसमें सबसे पहला काम है वान का पद ग्रहण करना। मोस्ट इजी थिंग टू डू। आपकी कंसंट्रेशन टोटल जो है, क्यों? जैसा अन्न है वैसा मन है, कहते हैं ना। तो सबसे बिगिनिंग कहां से हुई? कि मैं भगवान का प्रसाद ग्रहण करूंगा और कुछ ग्रहण नहीं करूंगा, ताकि मेरा मन जो है प्रसाद ग्रहण कर करके शुद्ध होता जाए। और प्रभुपाद ने यही करके दिखाया सबको। किससे अट्रैक्ट किया? प्रसाद से। आज भी इस कौन के अंदर अट्रैक्शन किससे है? प्रसाद। बिगिनिंग अभ्यास की बिगिनिंग कहां से आती है? कि मुझे केवल प्रसाद ग्रहण करना है और कुछ लेना ही नहीं, पहली बात। इसमें वैराग्य इंक्लूड हो गया कि आपको नॉन प्रसाद, जो प्रसाद नहीं है, उसको वैराग्य हो गया, उसको छोड़ देना। ये इंटरलिंक्ड है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है। मुझे जो चीज प्रसाद नहीं है उसका त्याग कर देना है, और जो प्रसाद है उसको ग्रहण कर लेना। दूसरा, भगवान के नाम का जप करना। मंत्र का अर्थ क्या होता है? मन को शुद्ध करने वाला, मन को तारने वाला। कि आपके मन का शुद्धिकरण होता है भगवान के नामों का जप करके, भगवान के नामों की कथा सुन के, अर्थात नाम रूप गुण लीला धाम, इनकी कथाएं सुन के, इनकी कथाएं कह के। हम लोग जब फिल्म देख के आते थे, आई रिमेम्बर अबाउट 30 years back, तो घर में से जो फिल्म देखने नहीं गया था ना, उसको कहानी सुनाते थे। आज एवरीबडी डज इट, नॉट मी, आई एम नॉट एक्सेप्शन टू इट, I'm not exception. अरे हीरो ने ऐसे किया, हीरोइन ने ऐसे किया, बहुत लंबी चौड़ी कहानी सुन, मुंह सुन, मेरे किसी से के आया हूं ना, सुन मेरे से कहानी, मैं कथा सुन के आया हूं, सुन मेरे से कथा। ये कभी आया हमारे मन के अंदर भाव? कभी हमने घर में जाके जो हम लेक्चर में सुन के बात आए, कथा में अच्छी अच्छी बातें सुनी, हमने क्या इनको कभी बताने का प्रयास किया? क्योंकि अभी हमारा अभ्यास नहीं, वी नॉट एट दैट प्लेटफॉर्म, हम उस प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंचे अभी तक। तीसरी चीज, लूज है सत्संग। आपको डिवोटीज का संग करना है, भगवान का संग करना है, भगवान की कथा का संग करना है, भगवान के नाम जप का संग करना है, भगवान के स्मरण का संग करना, स्मरण करना आपको। एक क्षण के लिए भी भगवान का विस्मरण नहीं होना चाहिए। ये बात भगवान ने कही, मन मना, मतलब मन मुझे दे दो, वो लेवल लेके आना कि मेरे मन के अंदर, मेरे तन के अंदर भगवान के सिवाय और कोई नहीं। सत्संग करना है, अर्थात हर समय एब्सोल्यूट ट्रुथ, अर्थात भगवान कृष्ण का संग करना। मेरे चिंतन में, मेरी चेतना में भगवान के सिवाय और कोई नहीं होना चाहिए। मेरी भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होनी चाहिए, मेरी बुद्धि व्यवसायत्मका होनी चाहिए। इट्स अ डिटेल टॉपिक, फिर कभी फुर्सत में इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि मुझे सत्संग कैसे करना। उसके बाद है चौथा दूर है स्वाध्याय। आई हैव टू रीड हियर। पढ़ते कैसे? बच्चा स्कूल में जाके पढ़ता, किताब पढ़ता है कि टीचर से सुनता है? ही इज रीडिंग थ्रू ईयर्स, कानों से ज्ञान प्राप्त कर रहा है। घर में आके ग्रंथ से पढ़ता, किताब पढ़ता है, एनसीईआरटी की जो भी किताब प्रिस्क्राइब्ड है, टीचर ने जो बताया ठीक है कि नहीं है। तो आपको भी स्वाध्याय करना है, पढ़ना भी है और सुनना भी, दोनों कार्य करने हैं। दिस इज अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आप। अब आता है डोंट्स, जो नहीं करने। धर्म के चार स्तंभ हैं कलयुग के अंदर, धर्म के चार स्तंभ हैं दया, सत्पस्या और शुचिता। अगर आप दया नहीं करोगे, जीवे दया नहीं करोगे, तो एक स्तंभ गिर जाएगा, एक खंभा गिर जाएगा उसका। ये आपका जो है, आपको डॉन्ट्स है। यस, मुझे धर्म को स्थापित रखना है, तो मेरे को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि जीव हत्या होती हो। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस के चार नियम हैं कि आपको मांस मछली अंडा मुर्गा सब चीजें तामसिक पदार्थ जितने हैं इनका सेवन नहीं करना। दूसरा है सत्य, ट्रूथफुलनेस। ये क्या है कि आप जब भी गैम्बलिंग करते हैं, जुआ खेलते हैं, तो छूट होता है उसके अंदर। कौन बनेगा करोड़पति? 50 लाख की शर्त है, खेलो तो 1 करोड़, नहीं तो वापस। जुआ है ना, झूठ है सब। पता नहीं चल कुक्का चल गया तो चल गया, याद तो मुझे है नहीं, आ गया तो आ गया। इसको कहते हैं सत्य जो है तब गिरता है जब आप जुआ खेलते हो, छल करते हो, बेमानी करते हो, तो आप ट्रुथफुलनेस के मार्ग से हट गए। तीसरा है ऑस्टेरिटी, तपस्या। तपस्या का अर्थ क्या है कि आपका मन भटकना नहीं चाहिए, आपको तपाना है अपने आप को, जैसे सोना तप के कुंदन बनता है ऐसे तैयार करना अपने आप को। तपस्या का मतलब है कोई भी ऐसी नशीली वस्तु जो आपके मन को भटकाती है उसको नहीं प्रयोग करना, उसको यूज नहीं करना, नो इंटॉक्सिकेशन। और चौथा है क्लीनलीनेस, शुचिता, पवित्रता। पवित्रता के अंदर क्या आता है कि मैं व्याभिचार नहीं करूंगा, अर्थात नो इलिसिट रिलेशनशिप, पर स्त्री पर पुरुष संबंध नहीं। जब ये चार नियमों का पालन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि अब आप जो है वैराग्य की स्थिति में हैं। जो चीजें कृष्णा कॉन्शियसनेस अर्थात कृष्ण के भाव में जाने के फेवरेबल हैं उनको तो आप फॉलो करते हैं, और जो फेवरेबल नहीं है उनको आप फॉलो नहीं करते। अब कृष्ण के भाव में जाना है तो आपको पेप्सी पीनी पड़ेगी। कितने लोग पेप्सी पीते, कोला? कितने लोग पेप्सी नहीं पीते? हाथों ने हाथ खड़े किए हैं। चलो मैं आपको आज पेप्सी पिलाता हूं और पेप्सी नहीं भी पिलाता, दोनों काम करता हूं, बोथ द जॉब्स। पेप्सी पीने को कितने लोग तैयार हैं? ना बताऊं पेप्सी के लाभ, ना बताऊं पेप्सी का नुकसान जानने को कितने लोग तैयार हैं? मतलब आपको पेप्सी का नुकसान क्या है ये बता देते हैं, फिर आपको बताते हैं पेप्सी का फायदा क्या है, कि पेप्सी कैसी पेप्सी पीनी चाहिए, पेप्सी में क्या मिलाना चाहिए। पेप्सी का पहला अल्फाबेट क्या है? पी। पी का मतलब है दुराशया पॉल्यूटेड माइंड, पॉल्यूटेड माइंड आपका नहीं होना चाहिए। समझ गए मेरी बात? पॉल्यूटेड माइंड का अर्थ क्या है? मन में कलमश, गंदगी, दुर्भाव, दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। आपको पॉल्यूटेड माइंड नहीं रखना है, पहला पी है। दूसरा अल्फाबेट क्या है? ई। ई है एनवियस नेचर, किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सब बातें मन को भटकाती हैं। अब ट्राई करके देखिएगा, जब आप किसी से ईर्ष्या करने लगते हो तो मन आपका जो है उसी के ऊपर लग जाता है, मन भटकना शुरू हो जाए, कैसे इसको नुकसान पहुंचाया जाए, ट्राई करके देखिएगा। इससे भागवतम से है ये, जैसे ही आपका माइंड एनवियस होगा, जैसे ही आपका माइंड जो है पॉल्यूटेड होगा, वैसे ही जो है आपका मन जो है वो भगवान की तरफ न लग के, कंट्रोल न होके डी कंट्रोल हो जाएगा। पेप्सी का तीसरा अल्फाबेट है पी। पी का अर्थ है पियर्सिंग वर्ड्स, चुभते हुए शब्द। मतलब आपके मुख से शब्द निकले और सामने वाले के हृदय को बींद गए, ऐसे आपने शब्द इस्तेमाल किए जैसे कि तीर छाती बजा लगा हो। अपशब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं, मतलब आपकी वाणी में शुचिता नहीं रही। अब वाणी के द्वारा हिंसा कर रहे हैं, तो वाणी के द्वारा भी हिंसा नहीं करनी, क्योंकि जब भी आप वाणी का गलत प्रयोग करोगे तो आपका मन फिर भटकेगा, क्योंकि आपका मन उसके प्रति भटक रहा है। उसके बाद एस। एस का मतलब है सींग विथ डिस्क्रिमिनेशन पृथक दिया, मतलब आप जो है सामने वाले को भगवान का स्वरूप नहीं स्वीकार कर रहे। धृतराष्ट्र ने क्या कहा, माम का पांडवश्च, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में क्या हुआ, भेद कर दिया उसने। हालांकि सारे कौरव थे, दोनों भाई कौरव वंश के हैं, धृतराष्ट्र भी और पांडु भी, परंतु उसने इमीडिएटली डिस्क्रिमिनेट कर दिया, अर्थात दोनों को जो है उसने डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग तरीके से देखा। जैसे ही आप जो है डिस्क्रिमिनेट करते हो, वैसे ही आप क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हो, जैसे क्रिटिसाइज कर देते हो सोचते हो मैं ठीक हूं और वो गलत है, और फिर आपका मन विचलित होना शुरू हो जाता। देन है लास्ट अल्फाबेट है इसका आई। आई का मतलब है आई एम द एंजॉयर ऑफ ऑल फ्रूटिव रिजल्ट्स, सकाम कार्य करता हूं उसका फल भोगना चाहता हूं, उसको एंजॉय करना चाहता हूं। आपके मन के अंदर ये भाव आना शुरू हो जाता है, फिर आप सकाम काम, आपका मन भगवान की ओर न लग के सकाम कर्मों के ओर लग जाता है, ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस भौतिक संसार में एंजॉय कर सकता हूं। तो ऐसी पेप्सी नहीं पीनी, कौन पीना चाहेगा ऐसी पेप्सी, कोई है? अब असली पेप्सी पिलाता हूं आप, ये कैसी पेप्सी हमें पीनी चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ पेप्सी वी शुड ड्रिंक। शांतः, पीसफुल, हमें शांत रहना चाहिए, किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अपना मार्ग, मुझे कृष्ण भावनामृत में जाना है, कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है, उस मार्ग से मुझे विचलित नहीं होना, सुख आए या दुख आए, या सर्वत्र अनभि स्नेह तत्त प्राप्त शुभ शुभम ना विनंदति ना दृष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठता। कि जो सुख की प्राप्ति से हर्षित नहीं होता, दुख की प्राप्ति से घृणा नहीं करता, उसकी बुद्धि स्थिर, वो लेवल लेके आना। ई से है समदर्शहा, अर्थात इक्वी पॉइस्ट, वो हरेक को दिव्य प्लेटफॉर्म पे देखता है। विद्या ने सम्पने हमने कभी हस्तनी, हर एक को एक ही प्लेटफॉर्म पे देखता है। वो कहता है सारे लिविंग एंटिटीज सब जो है भगवान के बनाए हुए हैं और सबके अंदर भगवान उपस्थित हैं, सब में भगवान का अंश है। जब ये बातें सोचने लगता है तो उसका मन विचलित नहीं होता। फिर है पी, पी से है शुद्ध, प्योरिफाइड, हमेशा जप करते हुए, कथा सुनते हुए, भगवान का जो है नामों की चर्चा करते हुए, हर समय उसके मन के अंदर भगवान रहते हैं तो कलमश नहीं रहता। आप मंदिर जाते हो, मिठाई लेके जाते हो, कहते हो मेरा बच्चा पास हो जाए, तो आपका मन भगवान में है कि बच्चे के पास होने में, किसमें है? तो भगवान में कहां, मन भगवान को कहां दिया, मन तो दिया ही नहीं। आपका मन जो है बच्चे के पास होने वस्तु में अटका हुआ है, एक विषय वस्तु में अटका हुआ है, भगवान में नहीं जाके अटका। वो शुद्धता कब आएगी, जब आपका मन भगवान पे फिक्स हो जाएगा। मन मना, मेरा मन जो है, अरे उद्धव ने कहा राधा जी से, कृष्ण ने संदेश भेजा है मन को ब्रह्म में लगाओ, तो राधा जी कहती उधो मन ना होते 10-20, एक ही मन था, वो तो श्याम सुंदर ले गया। हमारा मन अभी तक हमारे पास है, श्याम सुंदर को दिया ही नहीं। कितनों ने दिया श्याम सुंदर को, अभी अपने पास है। मैं चाहता हूं मैं ये करूं, मैं, अरे कृष्ण क्या चाहते हैं तू वो करना, तू क्या चाहता मैं ये करूं, अपनी बात क्यों सोच रहा। परंतु अभी वो बात समझ में नहीं आई। उसके बाद है एस, सेटिस्फाइंग ऑल लिविंग एंटिटीज, जितने भी प्राणी हैं, सर्वभूत अनुरंजना, सबको जो है खुश रखना, सबको प्लीज करना, सबको जो है प्रसन्न रखना, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। कोई भी है, भरत महाराज ने, जड़ भरत ने जब पालकी लेकर चल रहे थे तो उन्होंने अपने पैर के नीचे चींटियां ना आ जाए, इसलिए जो है समझ संभल के चल रहे थे, यू आर सो केयरफुल। तो हमें भी जो है सब प्राणियों के प्रति जो है एक भाव रखना है कि हर प्राणी हमसे प्रसन्न रहे। एंड लास्ट आई, दैट इज इंटीमेट रिलेशनशिप with devotees of the Lord. Association of devotees. Unse intimate relationship rakhna. Jo Ishwara minded people hain, jinka Bhagwan ke andar man racha hua hai, hame unke saath sambandh sthapit karna hai. Ye wo Pepsi hai, jise hum sabko peena chahiye, jisse ki man hamara vash mein hoga. To kitne log is Pepsi ko peene ko taiyar hain? अभी भी हाथ नहीं खड़े कर रहे, शर्म आ रही कहीं पीनी ना पड़ जाए. अभी भी पीने को तैयार नहीं है. बट आर वी सिंसियर? सिंसियर की हिंदी क्या होती है? सिंसियर किसे कहते हैं? क्या हम अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं? सिंसियर के स्पेलिंग क्या होते हैं? SINCER. तो S से शब्द बनता है सिंपल. Devotee has to be simple. बहुत जिसे कहते हैं आर्वजम, बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, साधारण, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए, ना उसकी ड्रेस में, ना उसके व्यवहार में, ना उसके खान पान में, ना आचार विचार में किसी प्रकार का जो है उसके अंदर, मतलब से कहते हैं कि दम्भ नहीं होना चाहिए, दिखावा नहीं होना चाहिए. डिवोटी हैज टू बी वेरी सिंपल. आई इनिशिएटिंग डेली. बोले दीक्षा हो गई मेरी 10 साल पहले, रोज का ही दीक्षा लूंगा मैं. बट यू हैव टू इनिशिएट, मीन्स रिमेंबर व्हाट डिड आई कमिट. और हमें जो है स्नान करना चाहिए भगवद गीता में, भागवतम में, चैतन्य चरितामृत में, जिससे कि हमारी आत्मा शुद्ध रहे, हमारी चेतना शुद्ध हो. इसलिए हमें अपने आप को डेली इनिशिएट करना है. इनिशिएट मतलब बिगिन करना है, हमारी डेली नई बिगिनिंग. हाँ मैंने गीता पढ़ ली. अरे भाई पढ़ ली तो उसको पता तो सही लिखा गया उसके अंदर? वो नहीं मुझे पता, पढ़ता रोज दो श्लोक पढ़ता हूँ, बंद कर देता हूँ. पढ़ी मैंने सारी, तो पढ़ी तो भैया समझ क्या आया. जिन्हें 50 बार पढ़ ली उसे समझ में नहीं आया, तेरे को एक बार पढ़ने में समझ में आ गया? मतलब यू हैव टू टेक बाथ. गंगा जी में स्नान करते हो तो अपने पाप धुलते हैं, भगवत गीता रूपी ग्रंथ में स्नान करते हो तो अपने पाप तो धुलते ही धुलते हैं, जिनसे आप चर्चा करते हो उनके भी पाप धुलते हैं. गीता महात्म में पढ़िए आप. वन हैज टू बी वेरी सिंपल, वेरी इनिशिएटिंग डेली. एन नो एक्सपेक्टेशन. सकाम कर्म नहीं, मुझे कोई आशा नहीं, फल की आशा नहीं, किसी लोभ नहीं, लालच नहीं, कुछ नहीं. मुझे कोई किसी प्रकार से किसी से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए. पर एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि भगवान आपकी सेवा में कैसे लगूं. दिस इज माय फाइनल एक्सपेक्टेशन, दिस इज द बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन. सी से आता है कंट्रोल ऑफ सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड. प्रत्याहारा, जो अष्टांग योग के अंदर जो है, जो पांचवा स्टेप है प्रत्याहारा, उसका मतलब है डिसोसिएटिंग सेंसेस फ्रॉम सेंस ऑब्जेक्ट्स. क्योंकि ध्याय तो विषयान पुंसा, विषयों के चिंतन से प्रॉब्लम हो रही है, तो आप विषयों का जो है अगर इंद्रियों के साथ संबंध तोड़ देंगे, डिसोसिएट कर देंगे. आप कहीं खड़े थे, दो लोग बातें कर रहे थे, मैंने आपसे पूछा प्रभु जी आप वहां खड़े थे बातें सुनी? नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया, सुना नहीं. आप पोस्टर देख के आ रहे रास्ते में, मैंने पूछा वहां एक दुकड़ पे पोस्टर लगा था, देखा आपने? नहीं देखा नहीं. दिस इज डिसोसिएशन. देख के भी अनदेखा कर देना, सुन के भी अनसुना कर देना, ये आपको लेवल लाना पड़ेगा. दिस इज दैट कंट्रोल ऑफ सेंसेस इंक्लूडिंग माइंड. उसके बाद है ई इक्विपोइस, समदर्शी. सब में समान भाव से दर्शन करना, एक समान भाव सबके प्रति रखना. और उसके बाद है आर. आर है रिजोल्यूट इन डिटर्मिनेशन. धैर्य चाहिए, धृति चाहिए, यस मुझे करना है, मुझे किसी भी कीमत पर भगवान कृष्ण के प्रसाद के सिवाय और कुछ ग्रहण नहीं करना. मुझे हर हालत में डिवोटीज का संग करना है, मुझे हर हालत में कृष्ण कथा सुननी है और कृष्ण कथा कहनी है. मीन्स आपकी डिटर्मिनेशन जो है, धृति जो है, बिल्कुल पक्की होनी चाहिए, सात्विक होनी चाहिए. और उसके बाद आती है बात ई. ई से आता है ईगरनेस, लौल्य होना चाहिए, ईगरनेस. प्रभु जी मुझे और बताइए, मुझे और बताइए, मुझे और बताइए. हम आपसे कथा सुनने कहाँ कहाँ मंदिर में कथा होती है, कहाँ कहाँ सुनने जा सकते हैं, कहाँ कहाँ हम जो है भगवान के नाम का जप बैठ के कर सकते हैं। हर चीज का आपके प्रति लालच होना चाहिए। लालच नहीं होगा गाड़ी आगे नहीं चलेगी। ये सिंसियरिटी, दिस सिंसियरिटी इज रिक्वायर्ड। जिस दिन ये सिंसियरिटी आ जाएगी उस दिन आपका मन जो है वो वश में होना शुरू हो जाएगा। हरे कृष्णा। इसमें अभी एक टॉपिक है, समय नहीं है मेरे पास, अदरवाइज आई वुड हैव टेकन इट, कि हम लोग जब कहते हैं मसूर की दाल नहीं खानी है, प्याज नहीं खाना है, लहसुन नहीं खाना है, ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो उसको क्यों नहीं खाना है? वाई शुड वी नॉट टेक इट? कृपा प्रश्न आते हैं कि सब्जी है ना, प्याज भी तो सब्जी है, जमीन में से निकलती है, दालों की तरह दाल है मसूर की दाल है, तो क्यों नहीं खानी चाहिए? सेंस करोगे छोड़ दूं? क्योंकि मन की बात चल रही है इसलिए मन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पर मुझे 9 बजे खत्म करना है इसलिए 8:58 में मैंने खत्म कर दिया। इफ यू वांट आई कैन टेक अनदर 10 मिनट्स सब्जेक्ट टू। अरे प्रभु जी बैठे हैं सामने, इनकी परमिशन से
लॉलियम जागृत हो गया, नेक्स्ट टाइम कर सकते हैं,
देख लो हमें कोई दिक्कत नहीं
देंगे तो अगली बार नहीं आएंगे,
बोले बता देंगे तो अगली बार नहीं आएंगे, इसलिए अगली बार के लिए प्रभु जी ने देखिए फाइनल कमांड दे दिया है, इसलिए इसका आप प्रश्न रखिएगा अपने मन के अंदर, व्हेन आई कम फॉर लेक्चर नेक्स्ट टाइम देन आई विल आंसर योर क्वेश्चन कि व्हाई शुड वी नॉट टेक दीज थिंग्स, इसको क्यों यूज नहीं करना है। आज के संदर्भ में कोई प्रश्न हो तो आपके पास 2 मिनट है, पूछ सकते हैं आप, 5 मिनट है। हाँ जी प्रभु जी, मैं बोले यही बता दो जो 5 मिनट में यही बता दो। हाँ प्रभु जी बोलिए आप। Yes? हाँ देखिए, समदर्शी एक बात समझ लीजिएगा, जब हम कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे कवि हस्तिनी, हमारा सबके साथ समान दर्शन है, व्यवहार अलग अलग है। भगवान 5वें अध्याय के 18वां श्लोक पढ़िएगा आप, यू विल गेट द आंसर टू इट। मैं आपको बड़ा टफ शब्द इस्तेमाल करूंगा, बुरा नहीं मानिएगा। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान विनीत ब्राह्मण गाय हाथी कुत्ता तथा चंडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। आप देखते एक समान दृष्टि से हैं, व्यवहार आपका अलग होता है। आप जो है बिच का दूध नहीं पीते, आप कुत्ते पे सवारी नहीं करते, किस पे करते हैं सवारी? हाथी पे करते हैं ना। व्यवहार आपका अलग अलग है परंतु भगवान सब में है, दर्शन भगवान का दर्शन मैं सब में कर रहा हूं, वो भी इंसान है मैं भी इंसान हूं, नास्तिक है तो क्या हो गया? भगवान ने उसको बुद्धि नहीं दी अभी, नहीं उसको इंटेलिजेंसाई नहीं आया आस्तिक भाव में, नो प्रॉब्लम, मेरा उससे व्यवहार अलग होगा। अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश करना है एक नाम अपराध है कि नहीं? पढ़ते हैं ना रोज सुबह, अंदर जितने लोग आए थे आज, क्या आपने उनका इंटरव्यू लिया कि आप श्रद्धालु हो कि अश्रद्धालु हो? तो मेरे से क्यों उपदेश करवा रहे हो? श्रद्धालु थे बहुत सारे लोग इसमें, नास्तिक है, भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है उनकी, देन वाई आर यू लेटिंग देम सेट हियर? समझिएगा, मैं बाजरे का दाना लेके चौक पे गया, मैंने जमीन में बिछा दिया, बाग में बिछा दिया, कबूतर चले आए, कबूतरों को डालने गया था, 4 कौवे भी आ गए, उनको मैं क्या अलग से डिस्क्रिमिनेट कर सकता हूं? एक कौवा पकड़ के निकाल दिया 200 कबूतरों में से, दूसरा कौवा निकाल दिया, पॉसिबल है क्या? जानबूझकर मुझे उनका एसोसिएशन नहीं करना। आई नो दैट ये क्रिटिसाइज करता है, आई नो ये अश्रद्धालु है, तब मैं उसको उपदेश नहीं करूंगा। पर मैंने अंदर आते हुए आप सबका इंटरव्यू तो लिया नहीं कि आप श्रद्धालु के श्रद्धालु, देयर वॉज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मैंने आपका जो है अंदर आते हुए इंटरव्यू नहीं लिया, या प्रभु जी ने इंटरव्यू नहीं लिया, भाई अंदर तो श्रद्धालु ही जाएगा, अश्रद्धालु तो जाएगा नहीं। पर अगर जो है ऐसा प्रोविजन हो कि दिस क्लास इज ओनली मेंट फॉर डिवोटीज, फिर आप बाहर कहोगे हाँ जी अब डिवोटी हो, हमने आपको बैच दे रखा है, डिवोटी हो तो अंदर जाओ वरना आप नहीं आओगे. एम आई क्लियर? साफ है ना मेरी बात? तो नास्तिक है उसके हृदय असुर के हृदय में है, गाय के हृदय में, शेर के हृदय में भी है, सांप के हृदय में भी है. भगवान की एक क्वालिटी है, भगवान कहते हैं न तो मैं किसी से पक्षपात करता हूं ना किसी से द्वेष, मैं सबके लिए संभव. नवें अध्याय का 29वां श्लोक पढ़िएगा 9.29. परंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है मैं उसको प्रिय हूं और वो मुझे प्रिय है. भगवान ना पक्षपात नहीं कर रहे, भगवान द्वेष भी नहीं कर रहे. भगवान ने कहा है कि जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप योनि भोग रहा है. मैं तो सूर्य सर्वभूता नाम, मैं तो सब जीवों का हितैषी हूं, जीवों का. जीव योनि कौन सी भोगता अलग बात है. बोलो इट. भगवान कहते हैं मैं सब जीवों का हितैषी हूं, मतलब मेरा सब मेरा पुत्र जो है पार्क के अंदर खेलने जा रहा है, मेरी ड्यूटी बनती है उसकी केयर लूं. आपका बच्चा खेलने जाएगा तो आप किसी को साथ भेजोगे, भाई ढाई ढाई साल का बच्चा है, तीन साल का बच्चा, देखो बेटा गिर ना जाए, इसको ध्यान रखना जरा, उन्हें जाएगा तो आप खुद जाओगे. भगवान कह रहे हैं कि मेरा पुत्र जो है मेरे नाम को छोड़े भौतिक संसार के अंदर खेलने के लिए, एंजॉय करने के लिए जा रहा है. एज ए फादर आई ओ ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं उस जिम्मेदारी का एहसास लेते हुए उसका साथ नहीं छोड़ूंगा. अब वो कर्मों के फलस्वरूप जीव जिस योनि में जाए, मैं तो जीव के साथ हूं ना, वो योनि के साथ थोड़ा हूं. वो नास्तिक बना या आस्तिक बना, सांप बना या चूहा बना, बिल्ली बना या कुत्ता बना, मैं वो योनि के साथ नहीं हूं, मैं जीव के साथ हूं, मैं आत्मा के साथ हूं. यही बात उपनिषद के, यही बात प्रभुपाद जी यहां कोट कर दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक के पढ़ पढ़ना कि आत्मा और परमात्मा इनका साथ क्या है. एक हृदय रूपी वृक्ष में बैठे हुए दो पक्षी हैं. उपनिषद में ही उल्लेख आया है धूप और छाया का, परमात्मा जो है धूप है और जीव जो है उनकी छाया. जीव के साथ है भगवान, वो योनि कौन सी भोग रहा है, मनुष्य योनि में भी उसकी कॉन्शियसनेस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं है. हमें किसका संग करना है, वी हैव टू चूज. दिस इज डिस्क्रिमिनेटरी, दिस इज आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वी हैव टू लर्न इट. ये हमें संग किसका करना है, नास्तिक का करना है या आस्तिक का करना है, श्रद्धालु का करना है कि अश्रद्धालु का करना है. क्लियर? एनी वन, एनी अदर क्वेश्चन? हाँ जी. गीता को पढ़ने का नियम है भी या नहीं भी, दोनों बातें हैं. नहीं, मैंने ये नहीं कहा नियम है, ट्राई टू डोंट मिस कोट मी. मैंने नियम नहीं बताया, मैं फिर दोहराता हूं अपने शब्द. मैंने कहा है गीता को लर्न करने का एक सिस्टम है, एक तरीका है. गीता आप किसी भी तरीके से पढ़ सकते हो, कोई भी अध्याय पढ़ सकते हो, बिगनिंग से कर सकते हो, एंड से कर सकते हो, आप रोज पढ़ सकते हो पूरा अध्याय, रोज पढ़ सकते हो आधा अध्याय, रोज एक श्लोक पढ़ सकते हो. बट उसको लर्न करने का मतलब है कि जो कुछ आपने पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल शेप कैसे देनी है, उसको प्रैक्टिकल में कैसे लेके आना है, वो मुझे याद रहे, मुझे समझ में रहे. मैंने आपसे कोट किया 9वें अध्याय का 29वां श्लोक, बैठे बैठे बता दिया आपको कि आपको आना चाहिए. कैसे आएगा, नियम नहीं है, लर्निंग तरीका है उसका, सीखना पड़ेगा कि आपको कैसे पढ़नी चाहिए जिससे आप गीता का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके. यू मस्ट गेट एडवांटेज एंड एडवांटेज, उसका एक सिस्टम है. वो सिस्टम जो है मैं आजकल जो है नेट पे पोस्ट करूंगा, मेरे जो ग्रुप है उसके अंदर, पीपल विल गेट इट, हम उनसे कॉपी ले सकते हैं. नहीं तो इसको जब सीखना होगा, जिसने अपनी अपनी भगवद गीता लेके आएंगे तब उनको सिखाएंगे. नेक्स्ट टाइम ब्रिंग योर ओन भगवद गीता, देन आई टीच यू हाउ टू रीड इट. नॉट नियम नहीं है, इट्स नॉट ए नियम. शब्दों का इस्तेमाल जरा थोड़ा गलत होता है ना तो भ्रांति फैल जाती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू लर्न भगवद गीता, हाउ डिड आई लर्न भगवद गीता. क्वेश्चन इज मैंने भगवद गीता कैसे सीखी. और दिस इज यू शुड फॉलो मी, यू शुड लर्न द वे आई लर्न. यू शुड आस्क मी, प्रभु जी आपने जैसे सीखी है वैसे हमको बताइए, हम वैसे पढ़ेंगे. तो सबसे पहली बात यह, पेशेंस होनी चाहिए. यू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस इज रिक्वायर्ड, क्योंकि पेशेंस के बिना गाड़ी चलती नहीं. धैर्य चाहिए, धृति चाहिए. हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की.